नमस्कार भारत, 7 नवंबर दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एफबीआई ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ विवादित ईमेल्स मामले को बंद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धांधली हुई।
Real change also means restoring honesty to government. First thing you should do is get rid of Clinton.
ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्री आज दिल्ली में करेंगे बातचीत।
उरी टेरर अटैक के बाद ब्रिटेन की सरकार के जो रिमार्क्स आए थे काफी हेल्पफुल थे। ये हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के बारे में कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे।
धूल और धुएं की वजह से दिल्ली में जनजीवन प्रभावित।
सांस तक नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है,
आंखों में जलन से लग रही है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को विवादित ईमेल लीक मामले में चुनाव से ठीक पहले क्लीन चिट मिल गई है। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने कहा है कि हिलरी क्लिंटन के जो ईमेल हाल ही में लीक हुए हैं उसमें कुछ भी आपराधिक नहीं है। कांग्रेस सदस्यों को भेजे एक पत्र में एफबीआई निदेशक जेम्स कूमी ने कहा कि एजेंसी ने ईमेल की जाँच पूरी कर ली है। जुलाई में उन्होंने ये कहा था कि हिलरी क्लिंटन लापरवाह रही हैं, लेकिन इसमें कुछ भी आपराधिक नहीं था। ये ईमेल कथित तौर पर हिलरी क्लिंटन की सहयोगी के पूर्व पति एंथनी वेनर के लैपटॉप में मिले थे। इस पर हिलरी के प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिलरी क्लिंटन को बचाने के लिए चुनाव में धांधली की जा रही है। मिनेसोटा में एक रैली में ट्रंप ने कहा कि हिलरी पर ईमेल लीक मामले को लेकर लंबे समय तक सवाल उठते रहेंगे। 8 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं, इससे पहले ट्रंप आज 5 राज्यों में रैली करने वाले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले के बाद भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए भारत पहुंच चुकी हैं। आज वे भारतीय व्यवसायियों को संबोधित करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए वीजा नियम कड़े किए गए हैं, इसका असर इस बातचीत पर पड़ सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पिछले 5 सालों में ब्रिटानी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 50% की कमी आई है, इस बात की पुष्टि की। अमेरिका समर्थित विद्रोही लड़ाकों में लड़ाके सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से रक्का शहर को छुड़ाने के लिए अभियान शुरू कर चुके हैं। रक्का सीरिया में आईएस की राजधानी के तौर पर माना जाता है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मुताबिक शहर के उत्तरी इलाके में झड़पें शुरू हो गई हैं। एसटीएफ में शामिल एक अमरीकी लड़ाके कबार तोलीदान ने ये बताया।
Right now we're in Ainissa, about to start the Raqqa operation. I am very excited.
इस वक्त हम इन इस्सा में हैं और रक्का पर कब्जे के लिए अभियान शुरू कर रहे हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं क्योंकि रक्का सिर्फ मध्य पूर्व में नहीं बल्कि दाएश के लिए भी बहुत अहम है। रक्का अब अकेला बड़ा शहर जिस पर दाएश का नियंत्रण है। ये थे कबार तोलहिदान के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने एक घर से 40 मानव खोपड़ियाँ और इंसानों की अन्य हड्डियाँ बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीबीसी को बताया कि छात्र ने मान लिया है कि वो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को $450 तक में मानव कंकाल बेचते थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से, जहां 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को विवादित ईमेल से जुड़े एक दूसरे मामले में भी क्लीन चिट दे दी है। कथित विवादित ईमेल्स के मामले में एफबीआई ने कहा है कि उसे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ किसी तरह की आपराधिक बात का कोई सबूत नहीं मिला है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एफबीआई का ये बयान चुनाव में हिलरी क्लिंटन को कितना फायदा और उनके प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे अमेरिका से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय, लेकिन पहले आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में क्या कहा है।
Real change also means restoring honesty to government. First thing you should do is get rid of Clinton.
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, वास्तविक बदलाव का मतलब है सरकार में ईमानदारी को दोबारा लाना और इसके लिए सबसे ज़रूरी है क्लिंटन से छुटकारा पाना। हिलरी क्लिंटन ने हमारे देश, हमारे लोग, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ जो अपराध किए हैं उनकी जांच लंबे समय तक जारी रहेगी और ये जांच हिलरी के खिलाफ मुकदमे तक पहुँचेगी। दूसरी ओर हिलरी क्लिंटन के खेमे ने FBI के बयान का स्वागत किया है।
We have seen Director Comey's latest letter to the Hill.
हिलरी क्लिंटन की कम्युनिकेशन हेड जेनिफर कह रही थी, उन्होंने FBI के निदेशक कूमी का नया पत्र देखा है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि ये मामला अब निपट गया है। और अमेरिका से कार्यक्रम में BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय टेलीफोन के जरिए शामिल हो रहे हैं। ब्रजेश, यहाँ राजधानी दिल्ली में धूल और धुएं के बादल आज भी छाए हुए हैं और उधर अमेरिका में विवादित ईमेल्स के मामले में FBI के ताज़ा बयान ने क्या हिलरी क्लिंटन पर छाए बादलों को हटाकर उनकी चमक को कुछ थोड़ा और बढ़ा दिया है?
देखें, यहाँ पर बात हो रही है वही खोजा पहाड़ निकली चुड़िया वाली कहावत बहुत लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो 28 अक्टूबर से अब तक ये कहानी जो थी ईमेल्स की वो हेडलाइंस में बनी रही और डेमोक्रेट्स को, खासतौर से हिलरी क्लिंटन को, इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जो एक मोमेंटम बना था उनका तीसरे डिबेट के बाद उस पर रोक लग गई थी। उसमें हिलरी क्लिंटन अब आखिरी क्षणों में कुछ हद तक अपने पैगाम पर फोकस कर सकती है, लेकिन अब सिर्फ एक दिन रह गया है चुनाव से पहले और लगभग माना जा रहा है कि 25 से 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोग वोट डाल चुके हैं अर्ली वोटिंग में, जैसा कि आप जानते हैं कई राज्यों में अर्ली वोटिंग है यहाँ पर, लेकिन और अब सिर्फ एक दिन रह गया है तो FBI की इस क्लीन चिट का क्या फायदा होगा उन्हें, इसका अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल है कि कितने लोगों तक ये बात पहुंचाएंगी और वो कितना इस बात से उनके फैसले पर असर पड़ेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के बयान के बाद भी उन्हें कपटी और भ्रष्ट कहना जारी रखा है और अब से मिनटों पहले ये भी कहा गया है कि उन्होंने कि FBI के जो रैंक एंड फाइल ऑफिसर्स हैं वो हिलरी क्लिंटन को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के जो कई रिपब्लिकन हैं वो अभी भी हिलरी क्लिंटन को कह रहे हैं कि के बारे में आज ही बयान दिया है उन्होंने इस FBI के बयान के बाद कि चाहे जो भी हो कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि हिलरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कागजात को में के साथ लापरवाही बरती है। हाँ, सेनेट में जो इंटेलिजेंस कमेटी की सबसे वरिष्ठ डेमोक्रेट सेनेटर है डायन फाइनस्टीन, उन्होंने काफी कड़ा बयान दिया है ये कहते हुए कि FBI का जो बयान आया था उसके बाद 9 दिन के बाद उनका ये कहना कि वो अब कि दोबारा से उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है, तो ये और एक तरह से विवादास्पद लगता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो हेडलाइंस थी कि हिलरी क्लिंटन की अभी जांच होगी या जो एक बना हुआ था जिसको आप सस्पेंस कहते हैं वो खत्म हुआ है, लेकिन इसका फायदा या नुकसान फिलहाल जांच पाना एक दिन के अंदर मुश्किल नजर आ रहा है।
जी ब्रजेश, आप तो सब देख रहे हैं अमेरिका में चुनाव से पहले इन दिनों इस वक्त क्या गहमा गहमी, चुनावी रंगत और किस तरह की रौनक नजर आ रही है?
रौनक से ज्यादा देखिए सबसे ज्यादा कोशिश हो रही है कि दोनों उम्मीदवार दिन रात एक किए हुए हैं, खासकर उन राज्यों में जिन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं, फ्लोरिडा हुआ, नॉर्थ कैरोलिना हुआ, पेंसिल्वेनिया इस बार बना हुआ है, मिशिगन जो कि आमतौर पर डेमोक्रेट्स का कोई की ही तरफ झुकता था वहाँ काफी रेस टाइट हो चुका है, तो उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं कि आखिरी मिनट पर वोटरों में जो वोटर अपना मन नहीं बना पाए हैं उनको अपनी तरफ खींच पाए, और ये राज्य बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ब्लू वॉल है एक रेड वॉल है, यानी कि वो राज्य जो हमेशा डेमोक्रेट्स की तरफ झुकते हैं वो ब्लू वॉल कहलाते हैं, जो रिपब्लिकन की तरफ जाते हैं वो रेड वॉल कहलाते हैं, और ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं एक तरह से फैसला अमरीकी चुनाव का इन्हीं राज्यों में होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज 5 रैलियां की हैं, वहीं हिलरी क्लिंटन क्लीवलैंड में थी, यहाँ के जाने माने जो एक खिलाड़ी हैं जेम्स लेब्रॉन जेम्स उनके साथ कि जिससे कि वहाँ जो खासतौर से जो काले वोटर्स हैं जिनमें उत्साह की कमी नजर आई है उनमें जोश बढ़ सके। राष्ट्रपति ओबामा, बिल क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स, जो उपराष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये सब हिलरी क्लिंटन के लिए प्रचार में लगे हुए हैं, तो एक आखिरी जो वक्त अब आया हुआ है तो उसमें रेस जो पोलिंग आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे काफी टाइट हो गया है, और इसलिए डेमोक्रेट कोई कसर नहीं बाकी रखना चाह रहे हैं। रिपब्लिकन्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही अधिकतर रैलीज कर रहे हैं, उनके कोई इस तरह के बड़े नाम नहीं कूदे हैं, पुराना कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति उनके लिए नहीं मैदान में आया है, लेकिन इसके बावजूद मामला जो है सो काफी कांटे का हो गया है।
ये थे बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय अमरीका से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
भारत के 3 दिन के दौरे पर आई ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत की संभावना है, जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने पूर्व कैबिनेट सचिव नरेंद्र चंद्रा से बात की।
पहला मुद्दा तो यही है कि ब्रेक्सिट के आगे अब ब्रिटेन की सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्योंकि उसमें भारत की जो ट्रेड है वो यूरोपियन यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन के साथ करके होती थी। दूसरा मुद्दा एक उठाया जाएगा भारत की तरफ से कि ब्रेक्सिट के बाद एकदम से जो पहला कदम उठाया है उसमें इमिग्रेशन पे काफी रोक लगाई है, और ये सोचा गया था कि कॉमनवेल्थ कंट्री होने के नाते और जो संबंध है इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के, तो इंडिया के ऊपर इस तरह से एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगे। इससे थोड़ा यहाँ पे ताज्जुब हुआ क्योंकि ईस्ट यूरोपियन और उनके तो अब रोक लगेगी, तो इसलिए इमिग्रेशन में तो वैसे ही आसानी होती ग्रेट ब्रिटेन को, तो इंडिया सोच रहा था कि हमारे ऊपर कोई सख्ती नहीं होगी। तीसरा कि FTA जो हो रहा था उसमें अब इंडिया और UK के जो इश्यूज हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की वो खुद उठाएंगी। एक तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर काफी आर्बिट्रेशन चल रहा है, कैन एनर्जी UK की और ब्रिटिश गैस, वोडाफोन, ये सब मसले ऐसे हैं जिसमें ब्रिटेन की सरकार जो है वो काफी इंटरेस्ट ले रही है। दूसरा एक सवाल ये भी उठेगा कि जो भारत की कंपनी काम कर रही है उनकी इनकम पे जहाँ पे ट्रेड पे थोड़ा असर पड़ा है क्योंकि पाउंड की वैल्यू काफी गिर गई है, तो ये पूछेंगे कि पाउंड के ऊपर ब्रिटेन की सरकार की क्या नीति होगी। टेरर का भी एक मुद्दा है, सिक्योरिटी को भी लेके और साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पे भी बात होगी, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार के जो रिमार्क्स आए थे उरी टेरर अटैक के बाद तो वो काफी हेल्पफुल थे। ये हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के बारे में कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे।
माना जा रहा है कि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की भारत पर निर्भरता जो है वो ज्यादा होगी, बढ़ेगी, आप उसको इसी रूप में देखते हैं?
नहीं, देखिए निर्भरता तो दोनों की एक दूसरे पे है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रिटेन जो है बहुत ज्यादा कोई इंडिया पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड है परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो बढ़ोतरी होने की जो इम्कान है वो इंडिया और UK के बीच में इसमें बढ़त बहुत हो सकती है अगर दोनों देश मिल के काम करें।
ये थे पूर्व कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा, जो ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे और भारतीय प्रधानमंत्री की आज होने वाली बैठक में बातचीत में उठने वाले संभावित मुद्दों के बारे में बता रहे थे। और इधर दिल्ली के आसमान पर छाए धूल और धुएं के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। दौड़ती भागती दिल्ली इस प्रदूषण की वजह से थमी तो नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को लगने लगा है कि हालात जल्द नहीं सुधरे तो सांसें थमने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने दिल्ली की सड़कों पर जाकर लोगों की दशा का जायजा लिया।
दिल्ली के लोगों के पास इस शहर पर इतराने की कई सौ वजह हैं, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर लोग इन दिनों अपना मुंह ढक कर चल रहे हैं, उन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में हो रही है, असल वजह यह है कि उन्हें चिंता है अपने स्वास्थ्य की, क्योंकि दिल्ली की हवाओं में कहीं ना कहीं जहर खुल गया है।
नहीं, ऐसा तो धुआं नहीं है देखा गई,
नहीं सांस तक नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है,
बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं मेडिकल मास्क खरीदने जा रही हूँ, क्लिनिकल मास्क। आंखों में जलन से लग रही है, सांस तक कम हो रहा है।
आंखों से पानी भी आ रहा है कल को भी?
मैं तो ज्यादा आता नहीं हूँ, बट आज आया हूँ तो आंखों में थोड़ी जलन सी महसूस हो रही है। मैं भी मास्क लेने ही जा रहा हूँ।
पूरी दिल्ली को बीते कई दिनों से धुंध और धुएं की चादर ने ढका हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मास्क लगाकर गुजर रहे हैं। क्यों आप ये मास्क लगाकर चल रही हैं?
क्योंकि पोल्यूशन बहुत हाई है आजकल।
तो आपको क्या लगता है कि मास्क के बिना आप सड़क पे निकल सकते हैं आज?
निकलने को तो निकल सकते हैं, बट उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो 4-5 साल बाद जब पता चलेंगे तब अच्छे नहीं होंगे, तो अभी प्रिवेंशन करना ज्यादा अच्छा है।
Which country you belong?
UK. I'm wearing a protection mask because I don't want to get sick.
हमारे साथ एक और शख्स हैं जिन्होंने मास्क तो नहीं लगाया हुआ है लेकिन अपनी रूमाल को नाक पर रखा हुआ है।
रमन नाम है मेरा। पोल्यूशन की वजह से लगा रखा है, आंख जलन हो रही है, चश्मा लाना भूल गया मैं घर से, अब मास्क था नहीं अर्जेंट में, फिर रूमाल ही था जो इससे बचा रहे।
प्रदूषण में दिल्ली का दम घुट रहा है और यही बात बताने के लिए कई बच्चे जंतर मंतर पर जुटे।
आसपास देखिए, हम लोग देख नहीं सकते, सारे छोटे बच्चों को अस्थमा की बीमारी हो रही है, हमारे बुजुर्ग ब्रीथ नहीं कर सकते।
दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। निर्माण कार्य पर अगले 5 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हर दिन स्वास्थ्य को लेकर एडवाइजरी जारी की जाएगी, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा?
हाँ, पढ़ना तो चाहिए, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो शायद फर्क पड़ना चाहिए।
जरूरी नहीं कि हर चीज गवर्नमेंट पे डाली जाए कि गवर्नमेंट देख नहीं रही पोल्यूशन, ऑब्वियसली कल गवर्नमेंट तो है नहीं करने वाली।
मेरे अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली प्लांटेशन का और ज्यादा देखना चाहिए, और थोड़ा जैसे हमारा ऑडियन वाला हुआ था उस तरीके से भी हमें और कुछ करना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक ग्रुप है जो काफी एंजॉय भी कर रहा है इस स्मॉग के बीच में, और बाहर भी लोग निकले हुए हैं। क्या आप लोगों को कोई डर लगता है?
जब हम सुबह निकले थे तब दिल्ली सरकार सो रही थी, अब हमें जाना है, अब हम कल से बाहर नहीं जाएंगे।
दिल्ली खुलकर सांस लेना चाहती है। सरकार का दावा है कि उसकी कोशिशों से प्रदूषण और धुंध छटेगी, लेकिन क्या ये दावे ऐसी उम्मीद जगाते हैं कि दिल्ली दोबारा प्रदूषण और धुंध की चादर में नहीं घिरेगी? वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
दिल्ली में धुएं और धुंध की चादर की वजह से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बंगाल और गुजरात के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 2 दिन तक एक गेंद भी नहीं डाली जा सकी और इस मुकाबले को आखिरकार रद्द करना पड़ा। इस बारे में हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने दिल्ली में ही अपना क्रिकेट जीवन बिताने वाले पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन से बात की।
जी क्या कह सकते हैं जी, अब ये धीरे धीरे एक दिक्कत प्रॉब्लम है जो बढ़ती चली जा रही है, और इसका समाधान क्या हो, क्या सोल्यूशन है समझ नहीं आ रहा। मास्क लगाने पड़ रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए तो ज्यादा तकलीफ का ये सबब है, क्योंकि बिल्कुल लंग्स को पूरी तरह से खोल के आप सांस लेते हैं तब खेलते हैं आप, और बड़े बूढ़ों को जिनको प्रॉब्लम है दमे की सांस की, तो बच्चों को भी आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो क्रॉप बर्निंग का इशू है उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए गाड़ियों का तो एक दिक्कत है ही, और ये जो बाईपास रोड जो बनाने की कोशिश की जा रही है इतने साल से डिले है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी जो भी आप कर सकें वो करें, नहीं तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
और आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो खिलाड़ी होंगे, उनका खेल जीवन तो एक तरह से स्टेक पर हो गया है।
बिल्कुल, अब आप जिम के अंदर या एयर कंडीशनिंग में कितने लोग खेल सकते हैं, किनके पास फैसिलिटी है, बाकी लोगों को तो बाहर जाकर खेलना, और आपको मैचेस तो खेलने। आपने देखा कि रांची ट्रॉफी तक का मैच जो है वो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है कि कितनी सीरियस सिचुएशन हो चुकी है, और ये कितने दिन रहेगी, बारिश का इंतजार करें कि अपने आप ठीक होगी। नॉर्मली ये जनवरी में ज्यादा हाल खराब रहता था जब फॉग के साथ धुआं मिक्स होता था, पर ये तो अभी इतनी ठंड भी नहीं है, तो ये तो सिर्फ पोल्यूशन है और इसके सिवा कुछ नहीं।
और आपको लगता है कि करनैल सिंह स्टेडियम हो या फिर पालम का ग्राउंड, अभी जो रणजी ट्रॉफी मुकाबले होने हैं यहाँ पर, अब शायद इस सीजन में उनको रीशेड्यूल करना पड़ेगा?
करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे में खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे खिलाड़ी, और इससे और बड़ी मुसीबतें भी हैं, जैसे इतनी भयानक भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं अगर कंटिन्यूसली आप खेलें तो। या तो मास्क लगा के खेलें, ऐसे तो बाकी देशों में भी देखा जाएगा कि किस तरह से खेल हो रहा है भारत में, तो अगर दिल्ली में मैचेस ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं।
बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में क्रिकेट मैचों का आयोजन ही ना हो ऐसा भी हो सकता है। ये थे पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
आज है 7 नवंबर दिन सोमवार, बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप, संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे आप बिटिया की कामना। जी हाँ, बिटिया, बिटिया, बेटी। बिटिया की कामना छठ के गीतों में किस तरह से रची बसी है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। हरिता कांडपाल स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी, दिल्ली के अखबारों में, दिल्ली में जो जहरीला धुएं की चादर जो जिसमें लिपटी हुई है दिल्ली, बस उसी की खबरें छाई हैं। कई कई पन्नों में कई सारी खबरें इसी प्रदूषण से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण में। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई कदम सुझाए हैं, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम होने के बुधवार तक इंतज़ार करना होगा और उसके बाद ही थोड़ी सी राहत मिल सकती है। वहीं अखबार ने ये भी जिक्र किया है कि सिंगापुर में 3 साल पहले ऐसे ही स्मॉग की समस्या उठी थी और बाकायदा इससे निपटने के लिए एक योजना लागू की गई थी और अलग अलग स्तर के प्रदूषण के लिए कई कदम उठाए गए थे। शायद दिल्ली को इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर इसी से जुड़ी छापी है अपने पहले पन्ने पर। कंपनियां हरकत में आ गई हैं और अपने कर्मचारियों को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर लगाए जा रहे हैं दफ्तरों में, और लोगों से कहा जा रहा है कि घरों से भी वो काम कर सकते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएँ दी जाती हैं आजकल। इसके अलावा कई कंपनी के CEOs ने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो इससे निवेश पर भी असर पड़ सकता है। तो इसके कई आयाम जो हैं वो अखबारों ने लिए हैं अपने संज्ञान में। प्रदूषण पर द हिंदू ने एक खबर दी है कि स्वास्थ्य को तो इससे नुकसान हो ही रहा है, इसके अलावा एक और नुकसान है, वो है विजिबिलिटी की कमी, और इसकी वजह से हरियाणा के करनाल और रोहतक में सड़क हादसे हुए जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि प्रदूषण का शिकार सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पड़ोसी देश भी हैं जो इसका दंश झेल रहे हैं। चीन का करीब 10वां हिस्सा और पूर्वी पाकिस्तान के कई इलाके इसकी चपेट में है। 2 तस्वीरें अखबार ने छापी है जिसमें बीजिंग के मशहूर थियानमेन स्क्वायर पर स्मॉग के बीच मास्क पहने 2 लोग नजर आ रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर है, वो है पाकिस्तान की, इसमें घनी धुंध के बीच सड़क पार करते हुए लकड़ियां कंधों पर उठाए हुए कुछ पाकिस्तानी पुरुष नजर आ रहे हैं। वहां भी कल हमने देखा था कि कई कुछ सड़क हादसों में लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि प्रदूषण के कारण वहां भी स्मॉग की शिकायत हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने यह भी लिखा है कि दिल्ली में जो दुकानें हैं वहां पर मास्क कम पड़ने लगे हैं क्योंकि प्रदूषण के जो हालात हैं उस पर मास्क खरीदने के लिए लोग कतारें लगा रहे हैं। और अखबार लिखता है कि खान मार्केट में कल कई दुकानों पर दिखा गया कि लंबी कतारें लगी थी मास्क खरीदने के लिए। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि ऐसी संकट की घड़ी में मास्क का सर्ज प्राइसिंग हो रहा है और समझदारी से चुने अपना मास्क। अखबार ने एक टेबल छापी जिसमें उन्होंने सारा ब्यौरा दिया है कि चाइनीज मास्क जो है वो 1 दिन चलता है, 30 रुपये में मिलता है, वहीं 1 साल चलने वाला एयर फिल्टर मास्क जो है वो 2000 से 2400 रुपये तक में मिलने लगा है। तो ये खबरें चाहिए। इसके अलावा एक और खबर जिसकी सारी ही अखबारों में चर्चा है वो है JNU के छात्र नजीब की माँ की तस्वीर है। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक इसी से जुड़ी तस्वीरें छापी हैं जिसमें उनकी माँ को जो है घसीट कर इंडिया गेट से हटा रही है पुलिस, उन्हें हिरासत में लिया गया। नजीब को वापस लाने की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर मार्च करने आए करीब 200 छात्रों के साथ नजीब की माँ भी वहाँ पर कल मौजूद थी जहाँ से उन्हें ले जाया गया।
नजीब का अभी तक कुछ पता नहीं,
कुछ पता नहीं है। इसके अलावा तीसरी एक खबर है जिसकी सभी अखबारों के पहले पन्नों पर चर्चा है। भारत प्रशासित कश्मीर के पुंछ जिले में पीर पंजाल घाटी में पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में कल 2 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई है। और जाते जाते एक तस्वीर जो है हिंदुस्तान टाइम्स की तस्वीर, छठ पर कुछ महिलाओं की अर्घ्य देते हुए तस्वीर है जिसका।
ये थी हरिता कांडपाल, बता रही थी दिल्ली के अखबारों में क्या छपा है आज। और अब बात छठ की, छठ की खबर का जिक्र करते करते हरिता कांडपाल रुक गई थी बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में, जहां जहां भी बिहार के लोग बसे हैं वहां वहां महापर्व छठ के दौरान सूर्य की पूजा होती है। आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और घर में बिटिया हो ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना सूर्य देव से की जाती है। सुनते हैं पटना से C2 तिवारी की रिपोर्ट।
बिहार के रोहतास जिले के नोखा गांव में संतोष कुमार का आंगन इस गीत से गुलजार है उनके घर आस पड़ोस की औरतें आई हैं जो छठ की तैयारी के साथ साथ छठ गीतों को गा रही हैं। छठ के पारंपरिक गीतों में से एक इस गीत में छठी मैया से कहा जा रहा है कि मैं बेटों के साथ साथ एक धिया यानी बेटी जरूर मांगूंगी। इस पारंपरिक गीत में जो बात कही जा रही है यानी बेटी को बचाने की, वो हाल के सालों में छठ पर्व के साथ बड़ी शिद्दत के साथ रेखांकित की जा रही है। अब आप ये गीत सुने जिसमें खेलती कूदती बेटी और पढ़े लिखे दामाद की कामना छठी मैया से की जा रही है। सीरीज पुरव्यातान के लिए मशहूर लोक गायिका चंदन तिवारी कहती हैं कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसका स्वर बहुत प्रगतिशील है।
जब भी कोई बहू या बेटी आती है तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नहाओ कूटो फलो। छठ में कहता है लोग कि रुनकी झुनकी बेटी मांगिला पढ़ल पंडितवा दामाद। धन की कामना नहीं है, केवल जो है पढ़ा पंडित दामाद होना चाहिए।
बता दें छठ मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। बहुत पवित्रता के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पर्व की खासियत है कि इसमें ऊंच नीच और छोटे बड़े के सभी भेदभाव, जातीय और धार्मिक बंधन टूटते हैं। यही वजह है कि छठ के एक गीत में सभी पेशे के लोगों की बेटियों का जिक्र है और उनसे व्रत में सहयोग की कामना है। ये गीत सुनिए। वरिष्ठ साहित्यकार और लोक गायिका शांति जैन कहती हैं कि यही वह पर्व है जिसमें बेटी को मांगा जाता है।
अच्छा, सूर्य को नमस्कार, जबकि कहीं भी बराबर कहा जाता है कि सूर्य को लोग नमस्कार करते हैं। एक मात्र प्रत्यक्ष देवता है और तीसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। एकमात्र पर्व है जिसमें बेटी की कामना की जाती है।
हिंदू धर्म के जानकार पंडित रामदेव पांडे छठ और स्त्रियों के संबंध को धार्मिक मान्यताओं के जरिए बताते हैं। वो कहते हैं कि छठ का व्रत पहली बार सतयुग में राजा शरयाती की बेटी सुकन्या ने रखा था, इसलिए व्रत में स्त्री स्वर की प्रधानता और बेटी की चाहत है। वो कहते हैं,
बेटी की परंपरा इसलिए माने कि अगर सूर्य की पूजा यह प्रारंभ हुई, छठ की पूजा प्रारंभ हुई तो यह सुकन्या के कारण, क्योंकि बेटी की पूजा तो हम दुर्गा पूजा में भी करते हैं लेकिन वहाँ मांग नहीं करते।
वहीं वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण खान कहती हैं कि कृषि संस्कृति से जुड़े लोक गीतों में बेटी की कामना है। यही कामना हमें छठ में दिखाई देती है जो कृषि संस्कृति से जुड़ा पर्व है। वो बताती हैं कि मिथिलांचल के कई हिस्सों में मुस्लिम औरतें भी छठ का व्रत करती हैं।
लेकिन हम लोग की तरफ तो मुसलमान भी छठ करते हैं और मुसलमान जो औरतें करती हैं वो पकवान नहीं पकाती हैं। बड़ा जब इंटरेस्टिंग मामला है तो बल्कि हम जब छोटे थे तो पूछते थे उन लोगों से, कैसा काहे करती हैं आप, पकवान काहे नहीं पकाती हैं? तो वो लोग बहुत भोलेपन से कहती थी, हमारा छुआ नहीं खाएंगे भगवान।
छठ सामाजिक समरसता का पर्व है। ये स्त्रियों के अस्तित्व को रेखांकित करता है। एक ऐसे वक्त में जब सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके मादा भ्रूण की हत्या के खिलाफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, तब छठ गीतों का ये प्रगतिशील स्वर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सीटू तिवारी, बीबीसी पटना।
इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7 कार्यक्रम का वक्त हो चला है समापन का। उससे पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को विवादित ईमेल लीक मामले में चुनाव से ठीक पहले एफबीआई ने क्लीन चीट दे दी है। इस पर हिलरी के प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिलरी क्लिंटन को बचाने के लिए चुनाव में धांधली की जा रही है। भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। अमरीका समर्थित विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से रक्का शहर को छुड़ाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। एक घंटे के बाद हम फिर हाजिर होंगे विश्व भारती लेकर। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।